नया सहस्त्राब्द और साहित्य। साहित्य युगों का अतिक्रमण करता चलता है, इसके बावजूद उसकी रचना किसी युग विशेष में होती है और उस युग विशेष की समस्याएं अपने ढंग से उसके लिए उत्प्रेरक भी बनती हैं। 20वीं शताब्दी का अंत कैलेंडर के संदर्भ में अपना एक विशेष महत्व रखता है, वह अलग बात है, पर इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण यह है कि इतिहास के इस बिंदु पर साहित्य को एकाएक अनेक प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यह एकाएक इतना एकाएक भी नहीं है। कई शताब्दियों से मुद्रण तकनीकी का व्यवहारिक लाभ उठाते उठाते साहित्य के पठ्य रूप का एक चरित्र बन गया है जो उसके पिछले श्रव्य रूप से भिन्न है, पर वही तकनीकी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कुछ ऐसी बदली है कि साहित्य का पुस्तक पठ्य रूप अब सहसा कंप्यूटर, रोबो, इंटरनेट के जमाने में एक खास तरह का दृश्य श्रव्य रूप लेता दिखता है, और यहीं साहित्य के लिए बुनियादी चुनौती आती है, रचना के पक्ष में भी और आस्वादन के पक्ष में भी। मूल समस्या काल की गति से उत्पन्न होती है। अभी तक साहित्य की रचना भी समय साध्य रही और आस्वादन प्रक्रिया भी। रचना के लिए कहा गया स्वयं कवियों द्वारा भाव को स्थिर होने पर स्मरण करना, इमोशन रिक्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, या कि बरस पर बरस बीते एक मुक्ता रूप को पकते। यह लंबी रचना प्रक्रिया तकनीकी के इस तुरंतता युग में कई तरह से बाधित दिखती है, और फिर भावक की तरह अपनी कठिनाई है कि उसका क्रमिक आस्वादन और एक तरह से रचना का पुनर्सर्जन आज के विविध प्रकार के श्रव्य दृश्य माध्यमों में उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है। एक जमाने का व्यंग्यपूर्ण मुहावरा था स्किन डीप ब्यूटी, यानी त्वचा स्तरीय सौंदर्य। अब कला सौंदर्य का आस्वाद नेत्र तथा कान तक ही अधिकतर रह जाता है, मन मस्तिष्क से होकर व्यक्तित्व के अंतर प्रदेशों तक नहीं उतर पाता। तब साहित्य के लिए खतरा है कि वह महज इंद्रियोपजीवी होकर न रह जाए। बाजार महात्म्य के इस युग में प्रायः सभी कलाएं उपभोग्य वस्तु के रूप में पहले से ही देखी जाने लगी हैं। सिनेमा, दूरदर्शन, केबल के बाद इंटरनेट साहित्य को श्रव्य पठ्य से अधिक त्वरित चालित छवियों के रूप में उतारने को कृत संकल्प है। रचना का पाठ अब टीवी स्क्रीन पर सुलभ होगा, जो पाठक की इच्छा अनुसार आगे पीछे तो किया जा सकेगा, पर पाठक न वहां अपना रेखांकन कर सकता है और न हाशिए में अपनी टिप्पणी। कुल मिलाकर यह पाठ एक बड़ी सीमा तक निर्व्यक्तिक होगा, और तब मुद्रित रूप में पुस्तक की व्यक्तिगत मित्र होने की भूमिका खत्म हो जाएगी। शास्त्रीय या वैज्ञानिक पाठ्य सामग्री तो इस स्क्रीन पर अपने प्रेषण में बाधित न होगी, पर साहित्य का समूचा व्यक्तित्व आस्वाद स्खलित हो जाएगा और भावक द्वारा रचना का अपने तई पुनर्सर्जन लगभग असंभव होगा। साहित्य का अनुभव नेत्र तथा कान तक सीमित रह जाएगा, और यूं साहित्य पद में रचनाकार भावक के साहित्य की आधारभूत प्रतिज्ञा खंडित होगी। पृष्ठ संख्या 288। साहित्य की रचना प्रक्रिया एक तरफा नहीं होती, सूचना एक तरफा होती है। साहित्य बराबर द्विपक्षीय होता है। रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है, तो भावक आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। यह संभव होता है भाषा की अपनी बहुरूपी प्रकृति और बहुस्तरीय अर्थ क्षमता के कारण। बड़ी रचना का बड़प्पन इसी में है कि वह अनेक युगों के पाठक की व्याख्याओं को आत्मसात करती हुई अपने को समृद्ध करती है और कालजयी बनाती है। व्याख्या वह है जिसे रचना वापस अपने में सहज भाव से धारण कर सके। जिस बिंदु पर वह उसे धारण न कर सके, वहीं से अति व्याख्या का क्षेत्र आरंभ हो जाता है, जो अनुभव के विस्तार क्रम में वर्जित प्रदेश है। साहित्य को यूं अब खतरा उप साहित्य से है, जो या तो सत्ता से अनुशासित होता है या फिर बाजार से। सत्ता से अनुशासित दूरदर्शन तो एकदम मुफ्त है, अब बाजार द्वारा अनुशासित भी काफी कम शुल्क पर सुलभ है। इस उप साहित्य या कभी कभी अप साहित्य की सस्ती लोकप्रियता साहित्य के लिए चुनौती है। यह ठीक है कि अन्य कलाओं जैसे स्थापत्य, मूर्ति या कि चित्रकला की तुलना में साहित्य की रचना प्रक्रिया का क्षेत्र अपेक्षया स्वायत्त है। तब यह भी लक्षित करना होगा कि वैचारिक संदर्भों में साहित्य की संभावनाएं जितनी प्रखर हैं, सत्ता उतना ही अधिक उसे अनुशासित करने को उत्सुक है। पर क्योंकि साहित्य की रचना प्रक्रिया में स्थूल स्तर पर कुछ भी बाह्य उपकरण अपेक्षित नहीं, तब साहित्य की निर्भरता बाजार के नियमों या कि शासन सत्ता पर सबसे कम है। यूं सत्ता और बाजार दोनों की ओर उसे सबसे कम उन्मुख होना होता है, पर तकनीकी ने इसका बदला टीवी, केबल, इंटरनेट के जरिए उप साहित्य और छद्म साहित्य के कई तरह के रूप बनाकर कर लिया है। गोदान, चित्रलेखा या कि श्रीकांत के धारावाहिक दूरदर्शन पर सुलभ हैं। कामायनी और राम की शक्ति पूजा पर वैसी ही नृत्य नाटिकाएं हैं जो साहित्य नहीं साहित्य के छद्म हैं, क्योंकि वे अपनी प्रक्रिया में एक तरफा हैं और उनकी प्रकृति मानवीय न होकर यांत्रिक है तथा उनका आस्वाद क्रमिक न होकर तुरंता है। रचनाकार और भावक का साहित्य वहाँ एकदम अनुपस्थित है। नई शताब्दी में साहित्य की ये कुछ विकट समस्याएं हैं जिनका निराकरण अकेले व्यक्ति के लिए दुस्साध्य है, और तब सत्ता की ओर से नहीं बृहत्तर समाज की ओर से ही यह संभव है। समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुरक्षित रखता है, भीड़ उसे नष्ट करने को उतारू है, और विडंबना यह कि संगठित सत्ता अपनी शक्ति भीड़ से लेना पसंद करती है बजाय समाज के। यदि समाज सत्ता को अनुशासित नहीं करेगा तो साहित्य शरित होगा। भीड़ संचार साधन सत्ता के बजाय समीकरण यदि समाज साहित्य सत्ता के बीच बनेगा तो विकास की व्यापक संभावनाएं उन्मुक्त होंगी, अन्यथा ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑल्डस हक्सले 1984, ऑरवेल या कि सेफ्टी नेट हेनरिक बॉयल के विलोम आदर्श राज्य फलित होते दिखेंगे। यह बुनियादी चुनाव नई शती नए सहस्राब्द को करना है। 1936 में प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक वॉल्टर बेंजामिन ने अपना निबंध मूल जर्मन भाषा में प्रकाशित किया, द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। उसका मुख्य तर्क था कि अभी तक कलाकृतियां मुख्यतः दृश्य चित्र कुछ संपन्न घरानों के अधिकार में थी। यांत्रिक सुविधा जैसे लिथोग्राफ, छपाई प्रेस आदि ने उन्हें एक बारगी जन जन तक फैला दिया है, जो एक स्वागत योग्य विकास क्रम है। अब साहित्यिक रचनाएं और उच्च कोटि के चित्र अपने मुद्रित रूप में आस्वाद के लिए बृहत्तर समाज को सुलभ हो सकेंगे। कहना न होगा हिंदी के मार्क्सवादी चिंतक आलोचक ने भी इस मान्यता के आधार पृष्ठ संख्या 289 पर अपने यहाँ नए विकसित संचार साधनों का स्वागत किया और उन्हें साहित्य के विकास के लिए उपकारक माना। हिंदी साहित्य सम्मेलन बम्बई अधिवेशन 1994, साहित्य परिषद का अध्यक्षीय अभिभाषण, जन संचार माध्यम और हिंदी साहित्य। इस प्रसंग में समझने की बात यह है कि कला अनुभूति का सृजनात्मक संप्रेषण संक्रमण सर्वाधिक तो जीवंत मानवीय संपर्क में संभव होता है, जैसे काव्य पाठ या कि संगीत समाज में, या फिर रचना के स्थिर मूल अथवा प्रतिकृति में, जैसे कि मुद्रित पुस्तक, चित्र आदि। भावात्मक संबंध इन्हीं स्थिर दशाओं में बनता है। आधुनिक वैद्युतिक संचार साधन तो एकदम ऐसे त्वरित, तात्कालिक और चलनशील हैं कि बेंजामिन के समय में उनकी कल्पना भी कठिन थी। इन नए संचार साधनों के द्वारा लगता है कि स्थायी भाव के बिना महज संचारी के आधार पर रस दशा को प्राप्त करने का यत्न चल रहा हो, तब फिर साहित्य का और इतिहास का भविष्य क्या है। नए सहस्राब्द में भारत की चिंता यदि किसी से सर्वाधिक मिलती है तो अन्य एशियाई देश जापान से, जहां भी परंपरा और तकनीकी प्रयोग के बीच संतुलन बनाने का निरंतर उपक्रम चल रहा है। श्रद्धा और ईड़ा को समरस करना जैसे उनका चरम लक्ष्य है। कह सकते हैं कि बढ़ते भौतिक प्रदूषण के कारण जैसे आज सहसा हमारे जीवन में वृक्ष का महत्व केंद्र में आ गया है, हो सकता है वैसे ही आध्यात्मिक प्रदूषण का एहसास बढ़ने पर साहित्य का महत्व फिर से रेखांकित हो। सहस्राब्द संस्करण का एक व्यापक अभिप्राय यह भी है कि अधिकतर आधुनिक भारतीय भाषा साहित्यों के साथ हिंदी का पहला सहस्राब्द यहाँ पूरा हो रहा है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास 1050 विक्रम संवत अथवा मोटे तौर पर 1000 ईस्वी से आरंभ होता है। इन्हीं प्रसंगों में उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास की बात कही है। तब 2000 ईस्वी में इस साहित्य का पहला सहस्राब्द संपन्न होता है। इस सहस्राब्द के पूरा होने पर जैसा कहा गया, साहित्य की अपनी मौलिक प्रकृति में तो परिवर्तन नहीं होता, पर उसकी स्थिति में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आता है। इस बदलाव का मूल कारण संचार साधनों का अत्यंत द्रुत गति से विकास विस्तार है। साहित्य अब मुद्रित पुस्तक से वैद्युतिक संचार की ओर उन्मुख है। आचार्य शुक्ल अपने यहाँ वाक जाल पद का प्रयोग लाक्षणिक रूप में कई बार करते हैं। यह वाक जाल सचमुच अभिधेयार्थ में हो जाएगा, इसकी कभी कल्पना भी संभव न थी। यो साहित्य की स्वायत्तता जो अभी तक सम्राटों, शासकों और सर्वसत्तावादियों द्वारा आक्रांत नहीं की जा सकी, इस नए परिवर्तन क्रम में अपने को वेद्य अनुभव करती है। इतिहास में काल परिवर्तन का यही औचित्य है। संचार के रचनात्मक उपयोग का सफल प्रयास आधुनिक हिंदी साहित्य में हुआ है। रघुवीर सहाय का काव्य जिसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ चुनौती को अवसर में बदलने का सृजनात्मक उपक्रम दृष्टव्य है, पर चुनौती उत्तरोत्तर जटिल और गहरी होती जाती है। इंटरनेट या कि जाल का फैलाव अंतहीन हो गया है। रामचरितमानस में सुरसा हनुमान की कथा ही साहित्य के लिए कुछ मार्गदर्शक हो सकती है। दूसरी ओर विचारधारा से मुक्ति पर विचार का पोषण सकारना, यह भी नई कविता का एक वैशिष्ट्य रहा है। पर विचार संचार से इस संवाद के बावजूद विवाद कहीं अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है। साहित्य के उन्मुक्त पक्षी को जाल से खतरा है। साहित्य का पक्षी जो देखता सब कुछ है, भोगता कुछ नहीं। आधुनिकता का मूल भाव था कि समकालीन समाज विधान से असंतुष्ट होने पर काल प्रवाह को द्रुततर गति से चलाया जाए। यह आत्मसजगता कमोबेश 19वीं शती से आरंभ होती है। पृष्ठ संख्या 290। प्रवाह को द्रुततर करने के लिए कई उपाय सोचे गए। क्रांतियां जैसे फ्रांस में, वर्ग संघर्ष के माध्यम से इतिहास का नियोजन जैसे सोवियत रूस में, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे भारत में, प्रविधि या की तकनीकी जैसे इंग्लैंड अमेरिका में। दो शताब्दी बाद गति अब इतनी तीव्र हो गई है, विशेषतः पश्चिम की तकनीकी के दबाव में, जिससे मनुष्य के अपने आयु क्रम की तुलना में इतिहास ऐसी द्रुत गति से भाग रहा है कि दोनों में सामंजस्य की संभावना ही नहीं दिखती। तब लगता है कि आधुनिकता के दौर ने एक नया रूप ले लिया है, नए सहस्राब्द में विचार संचार का। विचार को अनुभूति में गलाने का रचना कर्म यो प्रयोगवाद से आरंभ हो चुका था, संचार के आरंभिक रूपों से साहित्य के टकराने का क्रम भी। पर संचार की इंटरनेट या कि संजाल वाकजाल में निष्पत्ति नई शताब्दी में ही होती है। एक स्पष्ट विभाजक रेखा बनाते काल प्रवाह में शब्द को नए ढंग से स्थिर करते हुए हिंदी साहित्य के संदर्भ में आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल ठीक ही कहा था। तब गद्य से विचार और विचार से संचार का क्रमिक विकास स्वाभाविक है। अतः नए सहस्राब्द के संक्रमण को विचार संचार काल कहना उचित होगा, जिसमें साहित्य की भूमिका नए ढंग से विचारनीय होगी, क्योंकि अब टकराहट साहित्य की ई साहित्य से होनी है। द्रष्टव्य यह भी कि गद्य की भागीदारी बढ़ने से प्रस्तावित काल विभाग में सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचना की सक्रिय साझेदारी आप से आप जुड़ती है। आर्थिक तकनीकी भूमंडलीकरण के इस दौर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक व्यक्तित्व की सुरक्षा ही अपनी अस्मिता कवि इकबाल के प्रयोग में हस्ती को मिटने से बचाए रखने का उपाय है। साहित्य जिसकी एक प्रमुख प्रक्रिया कही जा सकती है। यूं साहित्य की रचना आज जितनी कठिन हुई है, उसकी आवश्यकता उतनी अधिक। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 ने संसार के श्रमिकों का एकजुट हो जाने के लिए आह्वान किया था, वह तो नहीं हुआ। 150 साल बाद भूमंडलीकरण के दौर में संसार के पूंजीवादी, पूंजी प्रत्याशी जरूर एकजुट हो गए। इन दोनों से अलग कोई तीसरा रास्ता निकालने में साहित्य क्या उत्प्रेरक हो सकता है? नया सहस्राब्द शायद इसका कुछ उत्तर दे। संभावना साहित्य में इसलिए है कि समाज विज्ञान अधिकतर चिंतन के आश्वस्त राजमार्ग पर चलते हैं, जहां दाएं बाएं स्पष्टतः बटे हुए हैं। साहित्य उनके बीच से मध्यम मार्ग नहीं निकालता, उसकी बराबर कोशिश रहती है अनुभूति प्रेरित नई अनजान पगडंडी पर चलने की, जो बहुत बार तो उसके चलने से ही बनती है। इस ग्रंथ को प्रयोग में लाते समय जो कुछ अवैज्ञानिक लगे, या पांडुलिपि में दोष के कारण जो कुछ त्रुटिपूर्ण जचे, या मेरे द्वारा जो कुछ त्रुटिपूर्ण हो गया हो, या अल्प रह गया हो, या न हो सका हो, वह विद्वानों द्वारा राग का त्याग करके एवं विद्वानों के मुख से ज्ञान प्राप्त करके ठीक कर लिया जाना चाहिए। वराह मिहिर बृहत संहिता 6वीं शती ईस्वी, भारत रत्न काणे द्वारा उद्धृत।